हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम हमसे है देश में। मैं हूँ आपकी दोस्त कम्मो और मेरे साथ हैं कबीर। और कबीर, ये तुम क्या कर रहे हो?
मैं वो लोकतंत्र पर एक नाटक की लाइनें रट रहा था।
अरे मेरे रट्टू तोते, कभी किसी ने बताया नहीं क्या तुम्हें कि अगर कुछ याद करना हो तो सबसे पहले उसका अर्थ समझ लेना चाहिए?
हाँ हाँ, ये तो ठीक कहा तुमने। तो चलो फिर विक्रम और बेताल से ही मदद ले लेते हैं।
बेताल छपी सी, बेताल छपी सी, बेताल छपी सी रे।
बेताल, बेताल कहाँ हो भाई? अरे तुम्हें कुछ बताना है।
आ गए राजन। हमें भी तुम्हें बहुत कुछ बताना है। बुलबुल बाग के लोकतंत्र की गाथा जो सुनानी है।
बेताल, मैंने भी सोचा है कि मेरे राज्य में भी चुनाव होने चाहिए।
अरे राजन, राजपाट छूट गया है तुम्हारा, पर अब भी तुम उसे अपना राज्य कह रहे हो?
अरे था तो मेरा ही, लोकतंत्र आ जाएगा तो क्या वो राज्य मेरा नहीं होगा?
लोकतंत्र में कुछ भी सिर्फ तुम्हारा नहीं रहता। लोकतंत्र में सब लोगों का होता है और अपने नेता को लोग खुद चुनते हैं। उन्होंने अगर तुम्हें नहीं चुना तो इसका मतलब लोग तुम्हें अपना प्रतिनिधि नहीं मानते। तुमसे अच्छी तो घुमक्कड़ घिरनी थी जो लोकतंत्र जल्दी समझ गई।
घुमक्कड़ घिरनी?
आ, तुम्हें बताता हूँ, अब आ।
अरे क्या बात कर रहे हो कौवी काका? शेर खान को भगा दिया गया और बुलबुल बाग में डेमोक्रेसी लाने की कोशिश हो रही है। वैसे अच्छा ही है, शेर खान की तानाशाही कब तक चलती?
अरे हारी घिरनी, बिल्कुल ठीक सुना बहन। और जीतियों ने भी एक पार्टी बनाई है और तुम्हारे हितैषी बनने वाले शेष चंद सारस भी शामिल हैं इन सब में।
पर लोकतंत्र तो हम सबके लिए है, फिर इसमें हम कहाँ हैं? हम भी तो हिस्सा हैं बुलबुल बाग का। हम भी तो 6 महीने यहाँ आती हैं। हम भी तो यहाँ की नागरिक हैं। क्या बोलती हो बहनों?
हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा बहन घिरनी ने।
हाँ बहन ने, हाँ।
तो आ जाना कल पौ फटते ही भूल भलैया चौक पर।
अगली सुबह सारसों के अलावा कई और जानवर और पक्षी आए हुए थे। सभी का यही मत था कि लोकतंत्र की ये पहल उनके लिए एक नई रोशनी थी जिसका हिस्सा बनना बहुत जरूरी था। अगले दिन बुलबुल बाग के दैनिक अखबार खुसर फुसर में न्यूज चैनल परसों तक में घुमक्कड़ घिरनी की ही चर्चा थी।
तो क्या घुमक्कड़ घिरनी ला पाएंगी बुलबुल बाग में लोकतंत्र? आइए जानते हैं परसों तक में एक छोटे से ब्रेक के बाद।
और एरियल नेटवर्क चूचू, हैशटैग घिरनी रॉक्स, हैशटैग डेमोक्रेसी में सबका हक जैसी बातों से पूरे दिन चहचहाता रहा और इन खबरों को सुनकर शेख चंद सारस की भौहें चढ़ती रही।
अब इनको भी अपना हक चाहिए। ये जो बुलबुल बाग में टिकते नहीं, मौका परस्त कहीं के। क्या कहते हो हुकुम चंद हंस?
शेख चंद, तुम ही उछल रहे थे लोकतंत्र को लेकर। अब देखो तुम्हारी ये प्रवासी बहनें और आ गईं।
वहीं दूसरी तरफ नेक नेवला, चपल चींटी और बाकी जानवरों से मिलने घुमक्कड़ घिरनी गई।
देखिए, मैं घुमक्कड़ घिरनी और मेरी सारी सारिस बहनें, हम यहाँ हर साल 6 महीने के लिए आती हैं। शेर खान के राज में तो हमें बड़ा तिरस्कार झेलना पड़ता था, हम उसका शिकार भी बनी। पर हम चाहते हैं कि जैसे लोकतंत्र में बाकी जानवरों और पक्षियों के हित के लिए सोचा जाएगा, वैसे ही हमारे हकों का भी ख्याल रखा जाए। हमें भी सुरक्षा और अपनी बात कहने का हक होना चाहिए।
आप लोग भी चुनाव क्यों नहीं लड़ते? क्यों चपल चींटी, क्या कहती हो?
पर ये बुलबुल बाग के लोकतंत्र का हिस्सा कैसे बन सकती हैं? ये तो घुमक्कड़ है, 6 महीने यहाँ और बाकी कहीं और। हाँ, वो और बात है कि इन्हें यहाँ आने में कोई मनाही नहीं होगी, कोई रोकेगा नहीं, पर लोकतंत्र के चुनाव में ये कैसे लड़ सकती हैं?
बिल्कुल लड़ सकती हैं। एक लोकतांत्रिक गणतंत्र में ऐसा हो सकता है। हर नागरिक के हाथ में पूरी ताकत दी जा रही है और हमारी घिरनी बहनों की ये सालाना जरूरत है कि वो अपना दाना पानी ढूंढने दूसरे बागों में जाती हैं, पर हर साल 6 महीने के लिए लौट कर भी तो आती हैं।
अगले दिन बुलबुल बाग बुलेटिन में खबर छपी, घुमक्कड़ घिरनी भी लड़ेंगी चुनाव।
बिल्कुल ठीक कहा, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का हक हर नागरिक को है, तो अगर घुमक्कड़ हिरनी चुनाव लड़ना चाहती है तो उन्हें रोकना गलत होगा।
और अब हमेशा की तरह एक सवाल, सही जवाब दिया और मैं फुर, और जानबूझकर गलत जवाब दिया तो यहीं के यहीं भस्म हो जाओगे।
ओह, अच्छा ठीक है, पूछो।
तो बताओ, आज की कहानी से तुम्हें लोकतंत्र की कौन सी मूल बात पता चली?
यही कि लोकतंत्र में सब बराबर हैं, हर नागरिक को बराबरी का हक है, चाहे अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक, नर हो या मादा।
सही जवाब। और ये मैं चला।
अरे बेताल, अरे बेताल, बेताल सुनो, बेताल।
वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं हमसे है देश। मैं हूं कबीर और मेरे साथ है मेरी दोस्त कम्मो। हमारा अगला सेगमेंट है देश विदेश, और आज हम चर्चा करेंगे रिपब्लिक शब्द पर।
देश विदेश से।
कबीर, आज हम रिपब्लिक की बात कर ही रहे हैं तो अपने दोस्तों को रोम की कहानी तो सुनानी ही पड़ेगी। रोम, जहां इस शब्द रिपब्लिक का जन्म हुआ।
इस शब्द के जन्म से पहले जन्मा था एक ख्याल। 6वीं शताब्दी के अंत में रोम बना एक स्वयंभू गणराज्य, अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड रिपब्लिक, जो तार्क्विन वंश के राजाओं के खिलाफ एक विद्रोह का परिणाम था। तार्क्विन वंश के आखिरी राजा लूसियस तार्क्विनियस सुपरबस से तो उनकी प्रजा इतनी नफरत करती थी कि उनका नाम ही रख दिया था घमंडी तार्क्विन। इसके बाद से रोम में लोग रेक्स, जो कि राजा का लैटिन शब्द है, उसे एक दुर्वचन यानी एक गाली के रूप में प्रयोग करने लगे। उनमें अब स्वतंत्र होने की इच्छा जागृत होने लगी थी। अगली 4 शताब्दियों में धीरे धीरे स्वतंत्र रोम में एक संविधान का जन्म हुआ। प्रशासनिक अधिकारी, कुलीनों की एक संस्था यानी सेनेट, और विभिन्न लोकप्रिय नागरिक विधानसभाएं सब मिलजुल कर आपस में रोम चलाने लगे। शुरू शुरू में लोगों के पास शासकीय ताकतें थोड़ी कम थीं, पर रिपब्लिक के इतिहास में ये देखा गया है कि धीरे धीरे लोगों की मांग बढ़ने पर ज्यादा से ज्यादा पावर अल्टीमेटली लोगों के पास ही आ गई।
ये कहानी मैं अपनी क्लास के बच्चों को जरूर सुनाऊंगी और फ्रेंड्स आप भी जरूर शेयर कीजिएगा।
तो चलिए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट जानकार है कहते में।
जानकार है कहते, जानकार है कहते।
आज हमारे साथ हैं सत्यम, जो श्रुति सोसाइटी फॉर रूरल अर्बन एंड ट्राइबल इनिशिएटिव के डायरेक्टर हैं। अच्छा सत्यम जी, हमें ये बताइए लोकतंत्र इस शब्द का अर्थ क्या है?
देखिए, लोकतंत्र की जो एक सार्वभौमिक परिभाषा है जिसे हम अक्सर कोट करते हैं, जैसे अक्सर बोलते हैं, वो तो यही है कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई एक ऐसी व्यवस्था जो जनता ने तय की है, अपने लिए तय की है, अपने द्वारा तय की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी व्यवस्था का जो मुख्य स्रोत है वह जनता है, जनता ही तय करेगी और जनता का ही शासन होगा। अगर हम इसको ऐतिहासिक क्रम में देखें, जब लोकतंत्र आया, लोकतंत्र जैसी व्यवस्था आई, तो यह उन ताकतों के खिलाफ आई जो एक तरह से वंशानुगत राजा बना करते थे कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, या धर्म की एक समय सत्ता हुआ करती थी। तो मठ, और स्पेशली जब यूरोप की हम बात करें जहाँ से ये शुरू हुआ, तो वहाँ चर्च की सत्ता हुआ करती थी, और 17वीं शताब्दी के समय जब औद्योगिकीकरण और चीज़ें हो रही थी, विज्ञान की सत्ता बनने लगी थी, तो यह एक पूरी व्यवस्था थी जिसने इन सारी चीज़ों को पलटा, धर्म की जगह जनता को लाया, और वंशानुगत या राजा से राजा के बेटे की सत्ता, फिर उसके बेटे की सत्ता को बदल के यह सत्ता चुनने का अधिकार भी जनता को दे दिया। और आज हमारे देश में जो व्यवस्था है उसमें लोकतंत्र चुनाव प्रक्रिया से संचालित होती है, और इस चुनाव में सबके वोट का एक ही कीमत होता है।
हमारे संविधान की उद्देशिका में सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये तीन शब्द हैं। इस तरह से स्वतंत्र भारत की नींव क्यों रखी गई थी?
आज़ादी के आंदोलन के बाद हिंदुस्तान की अपनी व्यवस्था बनी, उस व्यवस्था में तीन शब्द प्रमुखता से हमारे संविधान का हिस्सा बने। रिपब्लिक, जहां हम गणतंत्र की बात कर रहे थे, वही रिपब्लिक है कि एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी पे एक जैसा कानून लागू होगा। सोशलिस्ट और सोशलिज्म सामाजिक आर्थिक दर्शन है और वो एक जीवन शैली भी है। एक ऐसा समाज जहाँ कोई गैर बराबरी ना हो, जहाँ कोई भेदभाव ना हो।
सत्यम जी, क्या ये आज भी महत्व रखता है?
देखिए, समाजवाद की प्रासंगिकता कभी भी खत्म नहीं होने वाली, ऐसा मैं मानता हूँ। और विशेष रूप से तब जबकि आर्थिक मामलों में अमीरी गरीबी की खाई बढ़ रही है, ऐसे मामलों में जहाँ संसाधनों पे, उत्पादन के साधनों पे कुछ खास पूंजीपतियों का नियंत्रण होता जा रहा है, अधिकांश जनता के हाथ से वो संसाधन खिसकते जा रहे हैं, ऐसे में समाजवाद एक बहुत ही प्रासंगिक और ज़रूरी व्यवस्था के तौर पे हमारे सामने है। और सही पूछो तो ये तीनों शब्द हमारी आकांक्षाएं हैं जो हिंदुस्तानी सभ्यता अपने विकास के साथ पाना चाहती है और जिसका माध्यम यह डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा। तो सोशलिज्म हमें, हमारी एक महत्वाकांक्षा है, जीवन शैली है, आर्थिक दर्शन है। रिपब्लिक हम सबको एक सूत्रता में बांधने का एक मंत्र है। और डेमोक्रेटिक, जहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा, सब कोई गैर बराबरी नहीं होगी, सब अपने अपने ढंग से अपने तरह की बात कह सकेंगे।
सत्यम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अब बारी है आपके इम्तिहान की और सरप्राइज गिफ्ट की। जी हाँ, बस आपको देना होगा इस छोटे से सवाल का एकदम सही जवाब। जैसा हमने आज अपने एक्सपर्ट से समझा कि इंडिया एक रिपब्लिक है, गणतंत्र है, तो हमें बताइए कि भारत में रिपब्लिक डे या फिर गणतंत्र दिवस किस तारीख को मनाया जाता है?
जवाब देने के लिए कॉल कीजिए 07966210428 पर।
दिए गए ऑप्शंस के लिए बटन दबाइए और पाइए हमारा सरप्राइज गिफ्ट। ये कॉल निशुल्क है। तो आपको हमसे है देश कार्यक्रम कैसा लगा, हमें आप पत्र, ईमेल या फोन के जरिए जरूर बताएं। अगर आप लोकतंत्र से जुड़ी अपनी कविताएं और गाने भेजना चाहते हैं तो जरूर भेजें।
बिल्कुल, हमारा पता है आइडियो सिंक मीडिया कम्बाइन, 1381 सेक्टर 37, फरीदाबाद 121003 हरियाणा। और ईमेल आईडी है freedom@idiosyncmedia.org। SMS और फोन करने के लिए हमारा नंबर है 9958747972। कार्यक्रम हम से है देश आइडियो सिंक मीडिया कंबाइन द्वारा संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष के वित्तीय सहयोग से आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। बुलबुल बाग की कहानी रंजीत लाल की किताब द क्रो क्रॉनिकल्स पर आधारित है।